ओम शांति। आज की नुमा शाम में हमारे बीच में परम आदरणीय गीता दीदी जी उपस्थित है। हम सभी करतल ध्वनि से दीदी जी का अभिनंदन करते हैं। गीता दीदी जी, जैसा आपका नाम वैसा आपका जीवन है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा ना रख, कर्म करते जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान स्थिति रखो। श्रीमद् भगवत गीता की यह दो शिक्षाएं आपका वास्तविक जीवन परिचय है। ऐसी स्थित प्रज्ञ आध्यात्मिक उपलब्धि आपने बाबा की श्रीमत से और अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ से प्राप्त की है। 14 वर्ष की अल्प आयु में ही आप ब्रह्म कुमारी विद्यालय के संपर्क में आई। यहाँ की दिव्य शिक्षाओं को आपने आपको इतना प्रभावित किया कि आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है। राजयोग शिविर, तनाव मुक्ति शिविर भी आप कुशल नेतृत्व में होते हैं। आप बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है। आज एक बहुत सुंदर विषय दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का महत्व, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में दीदी जी हैं। रमणीकता और गंभीरता का अद्भुत संगम आपके व्यक्तित्व से झलकता है। पवित्रता एवं माधुर्य आपकी आभा में उतरता है। आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करने को हर दिल करता है, हर दिल करता है। दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर, विश्व शांति दाता प्यारे बाबा के शांति वन में आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है। बाबा ने ये बेहद का घर बनाया ही हम बच्चों के लिए है। वहां तो अपने अपने घर में रहते हैं, घर की जिम्मेवारियां, नौकरी धंधे की जिम्मेवारियां तो सिर्फ रूटीन पुरुषार्थ कर सकते हैं। डेली मुरली क्लास में जाते हैं और फिर भागने लगते हैं, जल्दी जल्दी नौकरी पर जाना है, घर में काम है, बच्चों को तैयार करना है। तो बाबा शुरू से बच्चों को बुलाते हैं कि यहाँ मधुबन घर में आओ, फुर्सत निकाल कर आओ और इस तपोभूमि वरदानी भूमि पर आकर के तपस्या करो, पुरुषार्थ करो। विभिन्न क्लासेस के माध्यम से ज्ञान की गहराई मिलती है और जितना ज्ञान गहराई से विस्तार से समझते हैं उतनी हमारी बुद्धि तपस्या के लिए तैयार होती है। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, ये है बाबा की पढ़ाई से जो हमें प्राप्ति होती है। मन सोचने का कार्य करता है, बुद्धि मन के विचारों को अंडरस्टैंड करती है, समझती है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, फिर बुद्धि निर्णय का कार्य करती है। हमें कदम कदम पर हर बात को, व्यक्ति को, परिस्थिति को समझना होता है, परखना होता है और निर्णय करना होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास सद्बुद्धि हो, दिव्य बुद्धि हो, ताकि राइट परखें, राइट निर्णय करें, क्योंकि बुद्धि निर्णय करती है, फिर हम कर्म में आते हैं। जो निर्णय हम करते हैं, कर्म करते हैं, उनके फल हमें ही भोगने होते हैं। इसलिए बुद्धि का बहुत क्रूशियल रोल है। कलयुग के अंत तक अज्ञानता कहो, अल्पज्ञता कहो, देहाभिमान के वश बुद्धि तमो प्रधान बन जाती है। तब सही निर्णय नहीं होते, विकर्म पाप कर्म होते रहते। हम सबका सौभाग्य है कि बाबा आकर हमें सद्ज्ञान देते हैं। भलाधा कल्प भक्ति में बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन सत्य तो मिला नहीं। और ही बाबा कहते हैं, हरेक महात्मा, धर्मात्मा, ऋषि मुनियों ने आकर के अपनी अपनी मतें दी और उसी का परिणाम अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक मठ, पंथ, समाज, आश्रम बनते गए। पर सत्य सामने नहीं आया, सत्य स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि आखिर भी व्यात्माएं थे। सत्य बाबा ही आकर के बताते हैं। इसलिए आज तक अनेक महात्मा धर्मात्मा योगी संत ऋषि मुनि हुए, अनेक शास्त्र ग्रंथ किताबें बनी। भक्ति के लिए तो कहते हैं ना कि व्यक्ति जीवन के सारे कामकाज छोड़कर केवल शास्त्र पढ़ने बैठे तो भी जीवन पूरा हो जाए पर शास्त्र पूरे नहीं हो। इतने शास्त्र धर्म की किताबें ग्रंथ बने हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि सूत मुंज गया, उलझ गया। कोई एक में एक बातें हैं, दूसरे में दूसरी बातें। इसलिए भक्ति में भी सदा गाते हैं, उपनिषदों में भी ये बातें लिखी हुई है, परमात्मा को ही कहते हैं असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, क्योंकि आत्मा को सत्य की खोज है और पता है कि परम सत्य परमात्मा ही आकर जीवन के हर पहलू के बारे में सत्य वो ही बताएंगे। पर सचमुच जब बाबा आते हैं, क्योंकि अनेक अपनी अपनी बातों को सत्य में खपाने की कोशिश करते हैं, हर कोई कहेगा हम जो बताते हैं वो सत्य है। इसलिए अनेक असत्य बातों में फंस गए, उलझ गए। आज भी बाबा ने कहा पानी की नदी पावन नहीं बनाती है, लोगों की भावना है पर वो भावना सत्य नहीं। हमारी बिलीफ मान्यताएं सत्य नहीं है ना। जीवन के अनेक पहलू है, आत्मा के बारे में आप क्या मानते हैं, परमात्मा के बारे में क्या मानते हैं, हरेक की अलग अलग मान्यता है। स्वर्ग नर्क, सुख दुख, पुरुषार्थ प्रारब्ध, कर्म कर्मफल, आलोक परलोक, जीवन से जुड़े हुए कितने एस्पेक्ट हैं, कितने पहलू हैं, और हर पहलू से हरेक की जो मान्यताएं हैं वो भिन्न भिन्न है। वो मान्यता उनके अपने मन की है या किसी से मिली हुई है, परिवार से मान्यताएं मिलती हैं, भक्ति शास्त्रों से धर्म संप्रदाय से मान्यताएं मिलती है, समाज एजुकेशन से बिलीफ मिलती है। इसलिए हरेक की अपनी अपनी मान्यताएं, अगर वो मान्यताएं गलत हैं, तो जीवन भी गलत ही चलता रहता है। बिहेवियर, आपका व्यवहार भी गलत ही चलता रहे, और वही आप सब देखते हैं ना कि हर परिवार में, हर समाज में, हर मानव मन की अपनी अपनी मान्यता है। कितने भय, अंधश्रद्धा समाज में, व्यक्ति में, जीवन में आप देखते हैं। अगर इन मान्यताओं को सही करना है तो सत्य ज्ञान चाहिए, फाइनल ट्रूथ चाहिए, जो बाबा हमें आकर के बताते हैं। इसलिए आज भी बाबा ने कहा, पढ़ाई ही सतगुरु की कृपा है। बाबा का राइट समय पर सृष्टि पर आना और आकर संपूर्ण सत्य ज्ञान देना, यही बाबा की सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि उन सत्यों के आधार पर जो भी कर्म हम करेंगे वो सत्य होंगे। जब कर्म सत्य होने लगते हैं तो भाग्य का भी उदय होता है, और उन सत्कर्मों के फल से सदा काल के लिए सुख शांति आनंद गुण शक्तियों की प्राप्ति होने लगती है। इसलिए बाबा की पढ़ाई ज्ञान योग धारणा और सेवा, ये चार सब्जेक्ट की पढ़ाई और फिर उसका प्रैक्टिकल जितना अच्छा हम करते हैं उतना श्रेष्ठ महान हम बनते हैं। तो सद्ज्ञान से सद्बुद्धि मिलती है, कहते हैं ना सद्ज्ञान से सद्मति मिलती और सद्मति से सद्गति होती। तो सारा आधार हम अपने मन बुद्धि और संस्कार को बाबा के ज्ञान से कितना दिव्य बनाते हैं वो ही है। इसलिए हम सब रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग क्लास करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमारी मेमोरीज स्मृति फ्रेश होती है। उस समय जो ज्ञान योग की पढ़ाई करते हैं वो धारण हो जाती है, बुद्धि में समा जाती है। इसलिए मुरली क्लास को साधारण नहीं समझना चाहिए, बाबा ने बहुत सरल शब्दों में मूल सत्य ज्ञान नए नए तरीके से रोज हमें समझाया। बाबा ने कोई विद्वत्ता की भाषा नहीं ली, सहज सरल शब्दों में बाबा ने मूल सत्य बताया। एक तो हिंदू धर्म के जो भी शास्त्र बने संस्कृत में बने, आम जनता समझ नहीं सकी। पंडितों ने, विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने मोनोपोली कर ली कि हम ही आपको समझा सकते। जब तक व्यक्ति खुद पढ़े नहीं, सुने नहीं, समझे नहीं, तब तक क्लैरिटी नहीं होती। कोई कितनी भी बात समझाते हैं, पर जहां बुद्धि को टच होता है तो आत्मा जागती है कि अब समझ में आ गया। तब आत्मा निर्णय करती है कि ये राइट है और मैं इससे ये इसी अनुसार चलूंगा। इसलिए खुद को समझना बहुत जरूरी है। हरेक अपनी अपनी लगन, अपने अपने निश्चय और अपनी बुद्धि अनुसार बात को समझते हैं और समझाते हैं। पर मुझे जब समझ में आएगा तब आत्मा जागती है, फिर खुद निर्णय कर सकती है। इसलिए रोज मुरली सुननी भी है, रोज पढ़नी भी है। हमारा अपना बाबा से प्यार है, हमारा अपना तर्क है, लॉजिक है, इसलिए हमें अपनी विवेक बुद्धि से रोज अध्ययन करना है। अगर हम बुद्धि का गलत उपयोग करते हैं, छल में, कपट में, प्रपंच में, शंका में, अनुमान में, जितना बुद्धि का मिसयूज करते हैं, बुद्धि कमजोर बन जाती। बुद्धि कमजोर बन जाती है, फिर राइट परख नहीं सकते, निर्णय कर नहीं सकते, मूंझते रहेंगे और मिसगाइड भी होते रहेंगे, क्योंकि खुद का विवेक सत्य और शक्तिशाली नहीं। बाबा ने कहा है ना कि मूढ़मति समझ नहीं पाते। जब हम पवित्रता तोड़ते हैं या कोई भी विकार के वश होते हैं, बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाते। सत्य समझ में नहीं आता है। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि की संभाल करो। बुद्धि ही मेन सप्लाई लाइन है। बाबा से जो भी ज्ञान, गुण और शक्ति मिलते हैं वो बुद्धि में ही धारण होते हैं। इसलिए बुद्धि मेन सप्लाई लाइन है। दुनिया में युद्ध होते हैं तो दुश्मन देश क्या करते हैं, मेन सप्लाई लाइन को कट करते हैं, जहां से उस देश को पानी, अनाज, चीजें, शस्त्र, बिजली, तेल, सब कुछ जहां से मिलता है वो मेन सप्लाई लाइन कट करते हैं। इवन जो चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, वो भी टेलीफोन लाइट की मेन सप्लाई लाइन कट कर देते हैं ताकि व्यक्ति असहाय बन जाए। तो माया माना, माया किसको हम कहते हैं? अज्ञानता, अल्पज्ञता, मनमत, परमत, इसको ही माया कहते हैं ना। इन अज्ञानता के कारण और विस्मृति के कारण जो विकृति कमजोरियां उत्पन्न होती है वो है माया। तो ये अज्ञानता, विस्मृति, मनमत, परमत की, गुरुमत, शास्त्रमत, जो असत्य बातें हैं वो ही बुद्धि को पतित, कमजोर बना देते हैं। बाबा कहते ना, समय पर श्रीमत सत्य ज्ञान की बातें याद रहे वो ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसको कहेंगे एक्यूरेट सद्बुद्धि। इसलिए संग दोष, अन्न दोष, वातावरण दोष जो बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं, गलत प्रभाव, उससे बुद्धि को सेफ रखना है। क्यों बाबा ने ये नियम हमें दिए? हम अपने मन बुद्धि संस्कार का शुद्धिकरण, सशक्त करण और दिव्यकरण कर रहे। बाबा कहते हैं ना, यही दिव्य बुद्धि सतयुग में दैवी बुद्धि बनेगी और उस दैवी बुद्धि से हम राज्य कारोबार करें। वहां कोई, बाबा कहते हैं ना, वजीर नहीं होगा, अपनी बुद्धि से कारोबार करें। इसलिए अगर ये लक्ष्य पक्का है सतो प्रधान बुद्धि बनानी है, बाबा के ज्ञान और योग से दिव्य बुद्धि बनानी है, तो पढ़ाई और योग के साथ साथ ये नियम पालन करना भी जरूरी है। अन्न शुद्धि, संग, बाबा कहते हैं ना, सत्य का संग, ज्ञान की किताबों का संग, सच्चे महारथी ज्ञानी योगी आत्माओं का संग, सत्य बातों का संग, बहुत जरूरी है। और वातावरण, बाबा के घर का वायुमंडल पावन सतो प्रधान वायुमंडल, क्यों होटलों में, क्लबों में, थिएटरों में, शराब खानों में, वहां के वातावरण गंदे हैं, ऐसे स्थानों पर हमें नहीं जाना है। अब हमारी वो दिशा नहीं, बाबा ने ज्ञान देकर हमें जगा दिया है। हम कौन है, हमारा कौन है, बाबा कौन है, और ये समय कौन सा है, हमें क्या करना है, ये जितनी जागृति हम आत्माओं में आएगी, हम अपनी स्थूल और सूक्ष्म जो हमारी शक्तियां हैं, क्षमता है, उनको हम सफल कर सकेंगे। हम अपने चिंतन को श्रेष्ठ बना सकेंगे। जो मन और बुद्धि में बातें भरते हैं वो ही चिंतन में आते हैं। जो चिंतन में आता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के आगे वर्णन में निकलता है। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा, उससे पहले की, ज्ञान और योग का फाउंडेशन जितना मजबूत होगा, नेचुरल धारणाएं होती जाएगी, मेहनत नहीं लगेगी। जो मूल ज्ञान बाबा ने दिया रचयिता और रचना का, वो जितना स्पष्टता से समझ में आएगा और स्वीकार होगा, योग भी सहज लगेगा, धारणाएं भी गुणों की सहज होती जाए। इसलिए बाबा से मिली हुई दिव्य बुद्धि, ये ज्ञान ही बुद्धि है, वो समझना और स्वीकार करना, तो दिव्य बुद्धि मिलती है। इसमें अपनी मनमत मिक्स नहीं करती, जो श्रीमत मिलती है एज इट इज धारण कर दे, अपनी इच्छा अपने विचार मिक्स नहीं करते। सबसे पहले परख चाहिए, हमें कौन मिला है, हमें कौन पढ़ा रहा है। बाबा रोज पक्का कराते हैं, आज भी बाबा ने कितना पक्का कराया, निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मा कुमार कुमारियां निमित्त है। यहां हम अपनी मत अपना ज्ञान देने नहीं बैठे, बाबा के सत्य ज्ञान को एज इट इज हमें समझाना है। तो ये परख चाहिए, सत्य ज्ञान ही आत्मभिमानी बना सकते हैं। इतने शास्त्र पढ़े पर आत्मभिमानी नहीं बन सके। दिन प्रतिदिन देहभान पक्का होता गया, विकार और घर करते गए, क्योंकि देहधारी का ज्ञान और देहधारी से योग। योग भी तो देहधारी से लगाने लगे। देहधारी देवात्मा हो, धर्मात्मा हो या महात्मा हो, देहधारी की याद देहाभिमान में लाने वाली। इसलिए बाबा कहते हैं ना, यहां भी देहधारी ज्ञानी योगी में हमें बुद्धि नहीं लगा रहे। हमारे सामने अनेक महान आत्माएं एग्जाम्पल है, हमारी दादियां हैं, पर देखो बाबा ने आज क्या कहा। अगर साकार को याद किया तो वो याद भी निष्फल हो जाए। जब साकार ब्रह्मा बाबा को याद करने की बात नहीं है तो बाकी हम सब तो नंबरवार है। बाबा तो नंबर वन, उनको भी याद नहीं कर। तो जितना हम अपने को निराकार ज्योति बिंदु आत्मा समझकर, डायरेक्ट निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा से योग लगाते हैं, उतना देहाभिमान खत्म होता है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं है कि बिंदु को कैसे याद करें। जब हम किसी को याद करते हैं, मान लो आप अपने विदेश में रहने वाले बेटे से फोन पर बात करते हैं, तो उस समय आपकी बुद्धि इस बात में नहीं जाती है कि बेटा खड़ा है कि बैठा हुआ है, ड्राइंग रूम में है कि बेडरूम में है, ऑफिशियल ड्रेस में है या घर के ड्रेस में है, ये बातें थोड़ी सोचते। आपका प्यार बात करता है। तो बाबा को जब याद करते हैं तो ये सोचने की बात ही नहीं है कि बाबा बिंदु है कि क्या, वो जो है जैसा है उसी नाम रूप से हमें उनको याद करना है। तो हम भी निराकारी निराहंकारी बनते जाएंगे। इसलिए बाबा ने अपने पूरे जीवन भर के पुरुषार्थ का सार अंतिम तीन शब्दों में क्या बताया, याद है ना सबको, निराकारी निरंकारी निर्विकारी। हमें वो ही स्टेज प्राप्त करनी है। पूरे पवित्र और पक्के योगी बनना है। अभी ही 4-5 दिन पहले ही मुरली में आया था ना, संन्यास माना पूरे पवित्र पक्के योगी बनना है। भल गृहस्थ में रहते हैं, हम सब सेवा प्रवृत्ति में रहते हैं, पर लक्ष्य क्या है, पूरा पवित्र बनना है, पूरा सतो प्रधान बनना है। और पक्के योगी, एक बाबा दूसरा न कोई। ये लगन लगाओ, ये लक्ष्य बनाओ। बाबा ने तो संपूर्णता की ही हर बात सिखाई है, पर जब तक आप व्यक्तिगत खुद लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक पुरुषार्थ तीव्र नहीं चले। कि अभी मुझे मेरी बुद्धि को कोई व्यर्थ में नहीं लगाना है। अभी के संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना, कर्म की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। पहले ज्ञान गहरा और स्पष्ट चाहिए और वो हम स्वीकारे। अपनी इच्छाएं अपनी मतें मिक्स ना करें। दिव्य बुद्धि बनाना ही इसलिए गाया हुआ है ना, कि भगवान जब अकल बांटने आए तो कहां गए थे, ऐसे कहते हैं ना। हमें पता है ना, ये वो ही संगम युग है जब बाबा अकल बांटने आते हैं। रोज मुरली सुनते हैं, वो क्या है, वही अकल बांटते हैं। स्वयं परमात्मा और उसका माध्यम आदि पिता ब्रह्मा बाबा, जिसको कहते हैं भाग्य विधाता, मूल सत्य को नंबर वन आत्मा ब्रह्मा ने मंथन कर करके हमारे सामने रखा। भक्ति में आत्माओं की मंथन की बातें सुनते थे। ये स्वयं भगवान के सत्य ज्ञान पर, क्योंकि भगवान तो निराकार है, वो सत्य बताएंगे, पर सत्य को दुनिया में रहकर कैसे धारण करना है ये ब्रह्मा बाबा बताते हैं। क्योंकि पूरे 84 जन्म लेने वाली वही आत्मा है। कितना बड़ा सौभाग्य हमें मिला है। बाबा कहते हैं ना, वहां अलग अलग मत के महावाक्य सुनते हैं और कहेंगे सत्वचन महाराज, पर यहां सत्वचन है, शिव बाबा का सत्य ज्ञान ब्रह्मा मुख द्वारा हम सुनते हैं। भगवान को अपने सत्य बताने हैं तो माध्यम भी तो कितना ऊंचा लेंगे ना। और यही ब्रह्मा बाबा की विशेषता रही ना, कि अपनी मनमत कभी मिक्स नहीं की। नहीं तो ब्रह्मा बाबा भी बहुत नाम मान शान मनुष्य गुरुओं की तरह कमा सकते थे। पर देखो, बाबा बिल्कुल माध्यम बने, अपनी मत मिक्स नहीं की। हमें अपने आप को चेक करना है, अपने जीवन में, अपने पुरुषार्थ में हम अपनी मत तो मिक्स नहीं कर रहे हैं ना। बहुत छोटी छोटी बातों में हम अपनी मत मिक्स करते तो श्रीमत डाइल्यूट हो जाती है, उसका पावर कम हो जाएगा, क्योंकि हमने मिक्सचर कर दिया। जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा पुरुषार्थ मुझे कर। हमने अपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी अपनी अनुकूलता अनुसार हमें जो सहज लगा वो हमने धारण कर लिया। पर ये समय है फिर से खुद को अच्छी तरह देखो कि बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ मेरा है, बाबा जैसा चाहते हैं ऐसा मेरी धारणा है, बाबा जैसे चाहते हैं ऐसी मेरी सेवा है। ये हमें चेक करना बहुत जरूरी है। और देहधारी और खुद के संस्कारों के प्रभाव से वो प्रभाव हमारे पर ना आवे, इसलिए हमें बार बार देहभान से डिटैच होते रहना, ताकि खुद के संस्कार के प्रभाव में भी ना आए। तो मधुबन में बाबा के बेहद घर में विशाल स्थान है, सतो प्रधान वातावरण है, क्योंकि बाबा ने ये स्थान, स्वयं भगवान ने ये किस लिए बनवाया है? बस बाबा की याद के लिए, आत्म कल्याण के लिए, है ना? इसलिए मधुबन पावन भूमि, तपो भूमि, वरदानी भूमि, जिस हॉल में हम बैठे हैं 20 वर्षों तक, चलो 97 से गिनती करें 2017 तक, 20 वर्षों तक हजारों भाई बहने बाबा से मिलन मनाते रहे। कितने बाबा का आना, वो घंटों तक सद्ज्ञान समझाना, वो लाइट माइट के वाइब्रेशंस फैलना, अभी भी देखो जिस दिन बाबा मिलन के लिए हम बैठते हैं और बाबा का आह्वान करते हैं, कितना पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, हरेक की बुद्धि बाबा से लग जाती है। तो बाबा मिलन की सीजन में आना के लक्ष्य से आना, इतना प्यार बाबा से जो बैठ के दिल के हर बात बाबा से करे, स्नेह संपन्न मिलन भावना। सिर्फ मधुबन देखने हम थोड़ी आते, वो तो टूरिस्ट लोग भी आके देख के जाते हैं, मेहमान भी आके देख के जाते हैं, लेकिन बाबा मिलन की सीजन में आना माना भगवान से स्नेह संपन्न मिलन भावना से आना। जितने ऊंचे पोस्ट पोजीशन वाली व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो विधि पूर्वक व्यवस्थित तैयार होकर मिलते हैं ना, तो भगवान से मिलन मनाना है तो बाबा में निश्चय, लगन, प्यार और साथ साथ बाबा के ज्ञान और श्रीमत पर चलकर संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना से आना। स्वयं बाबा और ब्रह्मा बाबा और हमारी दादियां, हमारे जो भी निमित्त बड़े हैं अभी भी, बस एक ही लगन, एक ही लक्ष्य। बड़ी मुश्किल से सत्य मिला है, बहुत भटके द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक, सत्य न मिलने के कारण ही तो भटक गए, पतित बन गए, दुखी हो गए। अब भगवान हमें मिले हैं, सत्य मिला है, सारे अगम निगम के राज बाबा ने खोल दिए हैं, हमारे जीवन की और ये सृष्टि खेल की ऐसी कोई बात नहीं जो बाबा ने ना समझाई। ये संगम का मौका है। अभी अलबेले रहेंगे तो हम ऊंची प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। ये समय है और सभी बातों से बुद्धि योग हटाएं, बस दिन रात बाबा, बाबा का ज्ञान, बाबा की सेवा। ठीक है, निमित्त मात्र नौकरी धंधा घर कारोबार संभालना है, क्योंकि हम चैतन्य हैं, कुछ तो पार्ट प्ले करेंगे, कुछ तो प्रवृत्ति करेंगे ना, तो वो संभालना है, पर गलत बातों का प्रभाव ना आए। हर घड़ी ज्ञान युक्त बुद्धि, जो सत्य बाबा बताते हैं वो स्वीकार करना है, अब उस अनुसार चलने में हाना हाना नहीं करना है। करेंगे, देखेंगे, दीपावली से करेंगे, शिवरात्रि से करेंगे, नहीं, जो सत्य है उसमें देरी क्यों करनी है। कहते हैं ना, शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ है वो आज और अभी से ही करना है, उसमें कोई मुहूर्त थोड़ी देखना होता है। खुद ही खुद को साक्षी होके देखो कि जब बाबा दिव्य बुद्धि दे रहे हैं तो उसे अपनाने में, स्वयं का परिवर्तन करने में अब गफलत क्यों हम कर रहे हैं। सत्य ज्ञान नहीं था, गफलत में थे, तब तो विकारों में डुबके खाते रहे। इसलिए जो बातें छोड़नी है, बाबा कहता है धक से त्याग कर, धक से त्याग। जो एक धक से त्याग करते हैं वो ही स्वीकार किया जाता है, वो ही बाबा स्वीकार करते हैं। इसलिए अभी समय वेस्ट नहीं करना, जब तक बुद्धि परिपक्व ज्ञान की पराकाष्ठा पर नहीं तब तक पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं। जब ज्ञान की पराकाष्ठा आती है तो परिपक्वता, मैच्योरिटी आती है। कोई हमें कहे, कोई हमें जगाए, कोई हमारे में उमंग भरे, तब हम पुरुषार्थ करें। ऐसा क्यों? हम खुद खुद में शक्तिशाली रहें, हमारा अपना परख शक्ति, निर्णय शक्ति इतनी पावरफुल हो कि हम गलत बातों के प्रभाव में आए ही नहीं। तो दिव्य बुद्धि और जो परिवर्तन बाबा हमारे चाहते हैं, हमारे में रूहानी दृष्टि, रूहानी दृष्टि, जब स्मृति यथार्थ तो वृत्ति शुद्ध, दृष्टि भी आत्मिक बनती। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने भी पुरुषार्थ किया था ना, आत्मा आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का किया। पवित्रता की धारणा और उसके बाद भी दैहिक संबंध की दृष्टि से नहीं देखना, संबंधों का भान नहीं रहे। हम एक बाबा के बच्चे, आत्मा आत्मा भाई भाई है, इस रूहानी नजर से हर आत्मा को देखते। बाबा कहते हैं ना, देह दृष्टि से देखना उस आत्मा को नुकसान पहुंचाना है, खुद को भी नुकसान पहुंचाना है। अगर हम दैहिक नजर से देखते हैं तो खुद को भी नुकसान करते हैं, सामने वाली आत्मा को पवित्रता की स्टेज से नीचे लाना ये सबसे बड़ा घात करना। इसलिए बाबा कहते हैं ना, काम कटारी नहीं, डबल अहिंसक, पवित्रता की दृष्टि वृत्ति से जीना और व्यवहार करना और किसी को दुख नहीं देना। दुख देना माना, जो भी आत्मा अगर मेरे से दुखी हुई, मीन्स वो अपनी ओरिजिनल शांत शुद्ध सुख आनंद की स्थिति से नीचे हो गई, तो ये कितना बड़ा नुकसान किया। बाबा हम सब आत्माओं को अपनी ओरिजिनल सतोप्रधान स्थिति में स्थित करा रहे। हमने ऐसे शब्द बोले, ऐसा चेहरा किया, ऐसी दृष्टि से देखा, ऐसा व्यवहार किया कि वो आत्मा अपनी ओरिजिनल शांत शुद्ध सुख आनंद की स्थिति से नीचे उतर गई, दुखी हो गई, तो हमने बाबा से विरुद्ध कार्य किया। इसलिए बाबा कहते हैं गुणग्राही दृष्टि, आत्मभिमानी दृष्टि, ताकि मेरे वाइब्रेशन उस आत्मा की ओरिजिनालिटी को जगाए, उसको कहेंगे रूहानी दृष्टि, उसके स्वमान को जगाए, उनकी अनादि शुद्ध स्थिति को जगाए। मेरा ऐसा भाव, भावना, दृष्टि, वृत्ति, विचार रहे, और यही हमारे इस अलौकिक जीवन की विशेष प्राप्तियां। हम सभी ने नया जन्म लिया है, अलौकिक जन्म लिया है, उस उसकी सिद्धि क्या है, दिव्य बुद्धि, रूहानी दृष्टि, ये हमें अचीव करना है। तो अभी हम सब अभ्यास करेंगे, मन ही मन लक्ष्य पक्का करना है, ये प्राप्तियां करना ही अलौकिक जीवन है। दो दो की जोड़ी बन जाइए और आमने सामने खड़े हो जाइए, आगे पीछे आसपास जोड़ी बन जाइए, हैंडशेक करिए, गुड इवनिंग कहिए एक दो को, नमस्ते करिए एक दो को, सलाम मालेकम करिए, ओम शांति कहिए, एक दो को कहना है, इतना जोर से नहीं, एक दो को सुनने जितना आवाज, अपने पार्टनर को देखकर मुस्कराइए, मुस्कराना है, एक दो की पीठ थपथपाइए, वाह बाबा के बच्चे वाह, अब एक दो के कान में बताइए आप मधुबन में आए हैं, कौन सा लक्ष्य पक्का कर रहे हैं, कान में बताना है, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आप यहां किस लक्ष्य से पुरुषार्थ करेंगे, बताया, ताकि एक दो पर अटेंशन दें, जिस लक्ष्य से हम यहां आए हैं वो पुरुषार्थ, वो अनुभूति, वो प्राप्ति हमें करनी ही है। अभी सब बाबा के सामने हो जाइए, पहला संकल्प, रोज खुद रिवाइज करें, रियलाइज करें, खुद खुद को याद दिलाएं, मैं आत्मा, अपने अनादि स्वरूप में पूर्ण शुद्ध परम पवित्र आत्मा हूं। मैं आत्मा सत्य हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, मेरे आदि अनादि स्वरूप में कोई भी अशुद्धि विकार नहीं है। मुझे वो ही परम पवित्र पूर्ण शुद्ध आत्मस्थिति प्राप्त करनी है। राइट साइड घूम जाइए, मेरा वर्तमान जीवन पवित्र ब्राह्मण जीवन है। ये मेरा नया अलौकिक मर्जी व जन्म है। स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से सत्य ज्ञान से नया जन्म दिया है। इस नए अलौकिक जन्म में मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं। आत्मस्मृति का तिलक मैंने लगाया है। मन वचन कर्म की पवित्रता की जनेव मैंने धारण की है। कमल आसन पर मैं विराजमान हूं। पावन बनना और बनाना मुझे सच्चे ब्राह्मण का कर्तव्य है। राइट साइड घूम जाइए, तीसरा संकल्प इस अंतिम जन्म में जो भी मेरा लौकिक और अलौकिक रोल है बाबा की श्रीमत अनुसार सच्चाई सफाई से प्ले करना है। बाबा मालिक कहे। उनकी श्रीमत अनुसार मुझे निमित्त भाव से कर्म करने हैं। राइट साइड घूम जाइए। चौथा संकल्प, रोज खुद खुद को याद कराएं, संगम युग के इस अंतिम चरण में मुझे श्रेष्ठ योगी महातपस्वी बनना है। हर कर्मेंद्रिय से देहाभिमान का त्याग करना है। और हर कर्मेंद्रिय में आत्मभिमानीता का तेज धारण करना है। मुझे अपनी आंतरिक शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार को शुद्ध शक्तिशाली और दिव्य बनाना है। सच्चा स्वराज्य अधिकारी बनना है। कोई भी व्यक्ति, प्रकृति या परिस्थिति का गलत प्रभाव न पड़े। राइट साइड घूम जाए। पांचवा संकल्प, रोज पक्का करें, मुझे ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी बनना है। ब्रह्मा बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है। मुझे माया जीत विकर्मा जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, कर्मातीत बनना है। बैठ जाए। अब खुद बाबा को देखते हुए मन ही मन पांचों ही संकल्प बाबा को बताइए। रिवाइज करिए। रियलाइज करें। दृढ़ता के साथ बाबा को बताइए। कि मैं ये पांचों ही बातें अटेंशन में रखकर दृढ़ता संपन्न पुरुषार्थ करूंगी।